नमस्कार भारत, तारीख 1 जून, दिन बुधवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। पिछले साल नोएडा के दादरी में भीड़ के हाथों मारे गए मोहम्मद अखलाक के घर से मिले मांस को प्रयोगशाला ने बताया गौ मांस।
मेरी नजर में पूरी तरह संदिग्ध है रिपोर्ट, क्योंकि मथुरा लैब की रिपोर्ट जब पहले आ गई तो एक ही लैब की दो रिपोर्ट कैसे हो सकती है।
यूरो कप के दौरान चरमपंथी हमले की आशंका, अमेरिका ने दी अपने नागरिकों को चेतावनी।
I'm not aware of any specific credible terrorist threat around these events.
प्रदूषण की मार झेल रही गंगा नदी की सफाई कितनी है मुश्किल। कार्यक्रम में खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रभात पांडे से। दिल्ली से सटे नोएडा के दादरी इलाके में गोमांस खाने की अफवाह में भीड़ के हाथों मारे गए मोहम्मद अखलाक के घर से मिले मांस को एक लैब ने गाय का मांस बताया है। इससे पहले एक लैब ने फॉरेंसिक जांच में अखलाक के फ्रिज में मिले मांस को बकरे का मांस होने की जानकारी दी थी। दूसरी रिपोर्ट मथुरा की एक लैब ने दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मांस का सैंपल गाय या बछड़े का है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि फ्रांस में 10 जून से शुरू होने वाले यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट को चरमपंथी निशाना बना सकते हैं। अमेरिका के गृह मंत्रालय ने कहा है कि गर्मी के दौरान बड़ी संख्या में यूरोप जा रहे पर्यटकों की वजह से वहां चरमपंथी हमले का डर बढ़ गया है। अमेरिका ने यूरोप जा रहे अमेरिकी नागरिकों को अलर्ट जारी कर उनसे सावधान रहने की अपील की है। पर्यटक स्थलों, रेस्तरां, बाजार, बसों और ट्रेन पर हमलों की आशंका ज़्यादा बताई गई है। इराकी शहर फलूजा में कब्जे की लड़ाई के लिए इराकी फौजों और इस्लामिक स्टेट के बीच ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। कब्जे के लिए आगे बढ़ती इराकी फौज को आईएस के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। 8 दिन से लगातार आगे बढ़ रही इराकी फौज अब तक शहर को पूरी तरह से नहीं घेर पाई है। फलूजा इराक की राजधानी बगदाद से 50 किलोमीटर दूर है। वहीं राहत कर्मी लड़ाई में फंसे 50,000 आम नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। एरबील में यूनिसेफ प्रतिनिधि पीटर हॉकिंस ने बीबीसी को बताया कि वो खास तौर पर बच्चों को लेकर फिक्रमंद हैं। हॉकिंस ने कहा,
We're obviously very, very concerned for all the civilians in the city, but particularly the children who must be going through a horrendous.
हम नागरिकों को लेकर बहुत परेशान हैं, लेकिन लड़ाई और बमबारी के इस माहौल पर बच्चों पर खास तौर से बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ऐसा माहौल उनके भविष्य पर गहरा असर डालेगा। उनके खाने पीने का, उनकी शिक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। वो बेचारे किसी भी तरह से इस माहौल से बाहर निकलकर सामान्य जिंदगी जीना चाहते हैं। ये थे यूनिसेफ प्रतिनिधि पीटर हॉकिंस। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जीका प्रभावित क्षेत्रों से अपने घर लौट रहे लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित यौन संबंध बनाएं या फिर 8 सप्ताह तक यौन संबंध बनाएं ही नहीं। WHO ने पहले जीका से बचने के लिए 4 सप्ताह तक यौन संबंध न बनाने की सलाह दी थी। ये सलाह महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए जारी की गई है। फ्रांस में श्रम सुधार कानून के विरोध में जारी हड़ताल से जनजीवन पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हड़ताल की वजह से आधी से ज़्यादा ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। आने वाले दिनों में एयरलाइंस और मेट्रो कर्मचारी भी हड़ताल पर जाने की योजना बना रहे हैं। मजदूर संघ के नेताओं ने कहा है कि सरकार अगर सोचती है कि कुछ दिनों में ये प्रदर्शन ढीले पड़ जाएंगे तो वो गलत सोच रही है। सरकार ने गलती की है और उसे अपना फैसला बदलना ही होगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। पिछले साल सितंबर में एक मामला बहुत सुर्खियों में था। यही वो मामला था जिसके बाद देश में असहिष्णुता की बहस तेज हो गई थी। तमाम साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने अपने सम्मान वापस लौटाए थे। आपको याद होगा वो मसला था दिल्ली से सटे नोएडा के दादरी इलाके में गोमांस खाने की अफवाह के चलते भीड़ ने एक व्यक्ति मोहम्मद अखलाक को पीट पीट कर मार दिया था। परिजनों का कहना था कि वो मांस बकरे का था। प्रशासन का भी यही कहना था कि वो बकरे का मांस था। अब मथुरा की एक प्रयोगशाला ने इसे गौ मांस बताया है। इस रिपोर्ट के आने के बाद एक बार फिर से इस मामले पर राजनीति गर्म है। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
पिछले साल 28 सितंबर को दादरी के बिसाड़ा गांव में अखलाक के घर पर गोमांस मिलने की शिकायत पर लोग आग बबूला हो गए थे और भीड़ ने अखलाक की हत्या कर दी थी। उनके बेटे को भी बुरी तरह मारा पीटा गया था। बाद में इस कथित मांस की जांच कराई गई तो फोरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि ये गोमांस नहीं बल्कि बकरे का मांस था, लेकिन अब एक दूसरी लैब की जांच में इसे गोमांस ही बताया गया है। अखलाक के परिवार वालों ने तो इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, लेकिन यूपी पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट से इस मामले में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पीट पीट कर किसी की हत्या करना अपराध है। वहीं इस मामले पर एक बार फिर सियासत गरमाने के आसार दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता मधुकर जेटली कहते हैं,
जिस प्रकार की घटना ये की गई है और इस घटना के द्वारा जो किसी एक निर्दोष व्यक्ति को मारा गया है, उस मारने के अपराध में जो कानून का काम है वो कानून अपना काम करेगा और उसके लिए जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है सरकार ने की है और कोर्ट भी न्यायालय में भी उस पक्ष को रख करके सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो निर्णय न्यायालय का आएगा उस पर सरकार एक्शन लेगी।
दादरी केस की जांच कर रही नोएडा पुलिस ने अखलाक के फ्रिज से मिले सैंपल मथुरा की फोरेंसिक लैब भेजे थे, जिसे पिछले महीने फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग समेत 15 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अखलाक का परिवार घर में गोमांस होने की बात को पहले से ही खारिज करता रहा है और अब भी उसी पर कायम है।
मेरी नज़र में पूरी तरह संदिग्ध है रिपोर्ट, क्योंकि मथुरा लैब की रिपोर्ट जब पहले आ गई तो एक ही लैब की दो रिपोर्ट कैसे हो सकती हैं?
वहीं भाजपा ने एक बार फिर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पार्टी प्रवक्ता विजय पाठक कहते हैं,
अखिलेश सरकार समय से निर्णय लेती तो बिसाड़ा को लेकर जो कुछ हुआ उसको रोका जा सकता था।
दादरी की इस घटना के बाद बिसाड़ा गांव में कई दिनों तक तनाव के हालात रहे थे। यही नहीं, इसके बाद ही देश भर में असहिष्णुता को लेकर काफ़ी बहस चली थी और कई साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने सरकारी पुरस्कार वापस कर दिए थे।
तो ये थी समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट। मेरे साथ जुबैर अहमद मौजूद हैं। जुबैर साहब, दोनों रिपोर्टें सरकारी लैब की हैं। पहले एक रिपोर्ट आई जिसको वो ये कहती है कि ये बकरे का मांस था, अब ये गौ मांस है। किसकी सही है, कौन तय करेगा और कैसे तय होगा? और इस तरह से, मतलब ये पहला मामला नहीं है, तमाम बार रिपोर्टें आती हैं, अलग अलग प्रयोगशालाओं की अलग अलग रिपोर्टें होती हैं।
दिलचस्प बात यह है कि मोहनलाल की ये दोनों रिपोर्टें जो हैं ये दोनों सरकारी प्रयोगशालाओं की है, तो ये तो अदालत तय करेगी। अदालत में इस रिपोर्ट को भी जमा किया गया है
सील बंद लिफाफे में।
लेकिन बात यह है कि इसको सही किसको माना जाए, हाँ ये तो कोर्ट तय करेगी। इसमें कुछ सवाल जो उठते हैं वो ये है, सबसे पहले कि ज़रूरत क्या पड़ी कि एक लैब की रिपोर्ट आ गई है और वो केस का हिस्सा है, फिर से उसको भेजा जाए किसी और लैब में। पहले तो वही दादरी के वेटनरी हॉस्पिटल में वहाँ से रिपोर्ट मंगाई गई थी, उसकी रिपोर्ट पे ये कहा गया था कि ये बीफ नहीं है। इसके बाद मथुरा के लैब में भेजा गया और वहाँ पर ये खबर आ रही है कि ये गौ मांस है।
नहीं, अगर मान लीजिए कि चाहे वो गौ मांस था या बकरे का मांस था, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? किसी की हत्या तो हुई है।
बिल्कुल, हत्या हुई है और ये कि एक पूरे मॉब ने जाकर मारपीट की और उस बच्चे की हत्या हो गई, इस केस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बल्कि जब पहली रिपोर्ट आई थी लैब से, दादरी से ही, उस वक्त जो ग्रेटर नोएडा के सुपरिटेंडेंट पुलिस थे, उन्होंने कहा था कि हमें इसकी रिपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है, ये जो हम तफ्तीश कर रहे हैं हत्या की, इस रिपोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी उन्होंने कहा था।
तो अब इस ताज़ा रिपोर्ट से दादरी केस पे जो जाँच चल रही, कोई फ़र्क पड़ेगा?
मुझे लगता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि गौ मांस खाना उत्तर प्रदेश में ये जुर्म नहीं है, गौ की हत्या करना जुर्म है। तो मेरे ख्याल से इस केस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन ये क्यों रिपोर्ट मंगाई गई दूसरी बार, ये मेरे ख्याल से ये अखिलेश सरकार जो है वही इसका जवाब दे सकती है।
आज के जो अखबार हैं, अखबार इस केस को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं?
देखिए, अखबार तो आज जो पहले पन्ने में इस खबर को लोगों ने, हर अखबार में ये छपी है खबर, हिंदी के अखबार जैसे अमर उजाला में भी ये दूसरी बड़ी खबर है कि दादरी के बिसाहड़ा में इखलाक के घर मिला गौ मांस बीफ था। ये इस तरह की और भी जो भी अखबार जो हम यहाँ पर,
मतलब सारे अखबार में
ये, लेकिन NDTV में एक ब्लॉग है, उस पर मेरी नज़र गई थोड़ी देर पहले, जिसमें वहाँ की जो NDTV की रिपोर्टर थी वो मथुरा गई थी उस लैब में जहाँ की रिपोर्ट अभी जो खबर का हिस्सा बन रही है। तो उसका उसने जो देखा उसने बताया कि सिर्फ चार लोगों पर निर्धारित था वो लैब जहाँ पे ये भेजी गई थी रिपोर्ट, कोई बात नहीं कर रहा था, और ये कि दफ्तर भी छोटा सा था और उसमें कोई ख़ास लैब के मशीन्स वगैरह भी ठीक नहीं काम कर रहे थे। तो इस रिपोर्ट को कितनी अहमियत दी जाए उस पर उन्होंने उस पर उन्होंने सवाल उठाया था।
बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैर अहमद आपका। कार्यक्रम में बड़ी खबर की और भी हम चर्चा करेंगे और बाकी अखबार क्या कह रहे हैं उसकी भी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा रुक के।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 31, 25 और 19 मीटर बैंड यानी 9835, 9915, 11995 और 15510 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि यूरोप में आतंकी हमले होने की आशंका है और वो बचकर रहें। फ्रांस में अगले सप्ताह से यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हो रहा है और विशेषज्ञों के मुताबिक इसी के चलते हमले का डर ज्यादा है। अमरीका के गृह मंत्रालय के मुताबिक टूरिज्म वाली जगहों, रेस्तरा, बाजार और रेल या बसों पर इस तरह के हमलों की आशंका है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए प्रभात पांडे से।
फुटबॉल प्रेमियों का इंतजार बस खत्म होने को है। 10 जून से फ्रांस में शुरू हो रहा है यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट। और इसे लेकर यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया के फुटबॉल प्रेमी हैं बेहद उत्साहित और फ्रांस में लगने वाला है उनका जमावड़ा। लेकिन अमेरिका के मुताबिक चरमपंथी संगठन यूरोपीय फुटबॉल के इस महाकुंभ को निशाना बना सकते हैं। अमेरिकी गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पूरी दुनिया से बड़ी संख्या में लोग फ्रांस और यूरोप में इकट्ठे होंगे और इसी वजह से इस दौरान चरमपंथी हमले होने का खतरा बढ़ जाएगा। हालांकि अमेरिकी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि यह खतरा किसी खास इवेंट को लेकर नहीं है बल्कि कहीं पर भी ऐसे हमले हो सकते हैं। जॉन किर्बी,
I'm not aware of any specific credible terrorist threat around these events or in any particular place.
किसी विशेष खेल प्रतियोगिता या अन्य किसी आयोजन पर चरमपंथी हमले का डर ज्यादा हो ऐसा नहीं है। हमारे पास उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर तमाम चरमपंथी गुट पश्चिमी देशों और अमेरिका के नागरिकों पर हमले कर सकते हैं, खास तौर से यूरोप में, इसीलिए हमने ये चेतावनी जारी की। ये थे अमेरिकी गृह मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी के शब्द। पिछले साल पेरिस में हुए हमले के बाद से ही फ्रांस चरमपंथियों के निशाने पर बना हुआ है। स्टेडियम, कॉन्सर्ट हॉल, बार और रेस्तरा में हुए हमलों में 130 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। इसी तरह से फ्रांस के पड़ोसी देश बेल्जियम में भी एक मेट्रो स्टेशन और ब्रसेल्स एयरपोर्ट पर हुए हमलों में 32 लोग मारे गए थे। इस्लामिक स्टेट ने इन दोनों हमलों की जिम्मेदारी ली थी। अमरीका ने कहा है कि ये चेतावनी जारी कर उसका मकसद अपने नागरिकों को डराना नहीं बस आगाह करना है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता जॉन किर्बी के मुताबिक,
मैं
ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यूरोप ना जाएं या ये फुटबॉल टूर्नामेंट ना देखें। हम तो बस ये कहना चाहते हैं कि आप जहाँ भी जाएं सावधान रहें, सचेत रहें और कुछ भी संदिग्ध देखें तो पुलिस को बताएं। ये थे जॉन किर्बी के शब्द। यूरो कप फुटबॉल देखने के लिए फ्रांस में दूसरे देशों से करीब 10 लाख लोगों के आने की उम्मीद है। पिछले 20 सालों में ये सिर्फ तीसरा मौका है जब यूरोप को लेकर अमेरिका ने चरमपंथी हमलों की चेतावनी जारी की है।
यूरो कप के दौरान चरमपंथी हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। भारतीय नेताओं का 3 सदस्यीय दल इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर है। ये दल धर्म सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मदारीपुर गया है और इस दल में 2 भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं। इन नेताओं के मदारीपुर के बाहर जाने को लेकर विवाद हो गया है। ढाका से अकबर हुसैन की रिपोर्ट जिसे पेश कर रहे हैं वात्सल्य राय।
बांग्लादेश में सनातन धर्म सम्मेलन में भारत के 3 नेता हिस्सा ले रहे हैं। ये मदारीपुर के एक संगठन के आमंत्रण पर पहुंचे हैं। 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य अरुण हल्दर, पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता सुरेश पुजारी और बीजेपी की सहयोगी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और सांसद रामदास अठावले शामिल हैं। इस दल के बिना आधिकारिक सूचना के झालोकाठी, पटुआ खाली और चटगांव जाने से विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि बीजेपी नेता अरुण हल्दर ने बीबीसी बांग्ला को बताया कि उनका दल केवल मदारीपुर और झालोकाठी गया था। हल्दर के मुताबिक बांग्लादेश में हिंदू धर्म के लोग खुद को असुरक्षित महसूस करने की जो बात कह रहे हैं उसे वो भारत के सामने पेश करेंगे।
सम्मेलन आवाज उठे सुरक्षा निरापत्ता व्यवस्था करा हो
सम्मेलन से आवाज उठ रही है कि या तो उन्हें सुरक्षा दी जाए या फिर वो यहाँ से पलायन करने को बाध्य हो जाएंगे और पश्चिम बंगाल चले जाएंगे। अगर वो वहाँ असुरक्षित महसूस करते हैं तो वो हमारे देश आ जाएंगे। यही मामला हम भारत के माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के सामने उठाएंगे।
हिंदू समुदाय के लोगों के आरोप को ये दल कैसे देख रहा है, इस सवाल के जवाब में हल्दर कहते हैं,
আমরা মনে করি যে এই জিনিসটা ওরা নিজের মুখে যেটা বলছে কিন্তু আমাদের যে ধারণা এতদিন
হম লোক এসা সোচতে হ্যাঁ কি ইয়ে লোক জো কহ রহে হ্যাঁ ও ঝুট নহি হো সকতা লেকিন হামারি ইতনে দিনো সে জো সোচ থি উসসে ইয়ে বিলকুল উলট হ্যায় ওয়েসে আভি ভি ইস সরকার পর হামারি পুরি আস্থা হ্যায় কি ও হিন্দুও কো পুরি সুরক্ষা দেগি।
सरकारी सूत्रों का कहना है कि भारतीय दल ने इस दौरे के लिए आधिकारिक इजाजत नहीं ली है और इसका कोई सरकारी परिणाम भी नहीं निकलने वाला है। इसके बावजूद भी ये लोग बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, इससे बांग्लादेश की सरकार नाखुश है। भारत के इस प्रतिनिधि मंडल की सरकार के कुछ मंत्रियों के साथ भी बैठक होनी है, लेकिन हिंदुओं के असुरक्षित महसूस करने के जो आरोप उठ रहे हैं उसे बांग्लादेश की सरकार कैसे देख रही है, इस पर प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कहते हैं,
हिंदू पॉपुलेशन आचरण
जहाँ भी हिंदू समुदाय रह रहा है वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए खास उपाय किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार की जो धर्मनिरपेक्ष नीति है उससे वो नहीं हटी है।
भारत के प्रतिनिधि मंडल ने ढाका में भारतीय दूतावास के साथ बैठक भी की है।
तो ये ढाका से अकबर हुसैन की रिपोर्ट थी जिसे सुना रहे थे वात्सल्य राय। भारत के नेताओं का 3 सदस्यीय दल इन दिनों बांग्लादेश के दौरे पर है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने कल बनारस के सेवापुरी जोगियापुर गांव में निषाद बस्ती में स्थानीय लोगों के साथ खाना खाया। बीजेपी ने इसे समरसता भोज का नाम दिया था। इससे पहले उज्जैन के सिंहस्थ में बीजेपी का समरसता स्नान चर्चा का विषय था। विश्लेषक इन आयोजनों को यूपी में होने वाले चुनावों से पहले वोट बैंक बढ़ाने की कोशिशों के तौर पर देख रहे हैं। हमारे सहयोगी वात्सल राय ने समाजशास्त्री बद्री नारायण से बात की और पूछा इन आयोजनों के माध्यम से बीजेपी क्या चाहती है।
आरएसएस का बहुत पुराना एजेंडा रहा है समरसता भोज के माध्यम से दलितों को अपने साथ जोड़ने का, और जोड़ना वो सामाजिक समरसता कहते हैं, और एक भोज का आयोजन करेंगे जिसमें दलित और सवर्ण साथ बैठ के खाएंगे। इधर इन्होंने ज्यादा तेज कर दिया है दलितों को क्रिएट करने का, क्योंकि उनको लगता है कि दलित ही एक ऐसी कम्युनिटी है जिसका कोई नेशनल लीडर नहीं है, मायावती को छोड़ दें आप लोग, और कांग्रेस से इसका मोह भंग हुआ है, तो ऐसे में इसको अपनी तरफ लिया जा सकता है ये मानते हैं। इसलिए उनके राष्ट्रीय सिंबल्स को या जो बड़े सिंबल्स हैं उनको ये अपने में समाहित करने कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश के चुनाव में चूंकि पिछली बार इनको 73-74 सीट जो मिले थे उसमें दलितों का एक पढ़ा लिखा जो शहरी तबका था उसका एक कुछ परसेंट का एक छोटे तबके का रुझान था और उसने इनको वोट दिया था, तो इनको लगता है कि इसको एक्सटेंड किया जा सकता है और इस पर इस ट्रेजेक्ट्री को एक्सटेंड करके ब्रॉडर दलित कम्युनिटी को अपने साथ जोड़ा जा सकता है। लेकिन ये जो प्रयास है, इस प्रयास की समस्या ये है कि एक तरफ वही लोग जो सामाजिक समरसता में शामिल होते हैं एक दिन, दूसरे दिन वही लोग उन दलितों को गाली देते हैं, एक तरह का दिखावटी होकर रह जाता है।
असली चुनौती क्या है, केवल दलित के घर खाना खा लेने से या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के घर खाना खाने से उनकी समस्या का समाधान हो जाता है या ये समुदाय इससे संतुष्ट हो जाते हैं?
जो ये सामाजिक समरसता जो दिखती है चुनावी दिनों में, वो जिस दिन वो उनके साथ खाना खाते हैं दूसरे दिन को गाली देते हैं, तो वो उस तरह से बन नहीं पाता। और लेकिन ये सारे राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं कि दलित और ओबीसी को अपने तरफ जोड़ें, लेकिन मुख्य समस्या है कि उनके जीवन के समस्याओं का समाधान हो, उनका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो, उनका लाइवलीहुड बने, उनको जीवन जीने की कंडीशन मुहैया की जाए, उस दिशा में अभी ये सारे राजनीतिक दल लगातार फेल करते हैं और इसको एक सिंबॉलिक पॉलिटिक्स बना करके छोड़ देते हैं।
चुनाव के पहले सभी पार्टियों ने एक सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दी है, ऐसे में आप क्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस पार्टी का आपको पलड़ा भारी नजर आता है?
देखिए, सोशल इंजीनियरिंग का जो बेसिक फॉर्मूला ये है कि आपका कास्ट बेस्ड वोट कितना है, और इसका कास्ट बेस्ड वोट बड़ा होगा वो मजबूत पार्टी होगी। तो इसमें बीएसपी और एसपी दो के जो बेस वोट है वो स्ट्रांग है, বিএসপি সবর্ণ আর মুসলিম আপনার সাথে সবর্ণ মে ব্রাহ্মণ এন্ড মুসলিম জোড়া চাহতি হ্যাঁ ইসি তর সমাজবাদী পার্টি গৈর জাচো দালি যাদব প্লাস দূসরি ওবিসি জাতিয়া এনবিসি জাতিয়া হ্যাঁ জোড়া চাহতি সতেরা এনবিসি জাতীয় আপনার পতা হোক মুলায়ম সিং যাদব এসসি মে শামিল করি মান কি নই মানি গই তো মোবিলাইজ করকে আপনার তরফ লে আনে কি কোশিশ করেন তিসি তরফ বিজেপি হো ওবিসি মে পটেল আর সাথ সাথ এনবিসি আর দলিত তবকে আপনার সাথে জোড়া চাহিদি লকিন সারে তিনো দল একই তরহ সোশ্যাল গ্রুপকে টকরা রে হ্যাঁ ওবিসি দল তো আপ সমঝ সকতে হ্যাঁ লড়াই বহু তগড়ি হিসেবে ওই আগে যায়গা জিসা কাস্টেস ভোট বড়া হোগা।
ये थे समाजशास्त्री बद्दी नारायण जो कि विश्लेषण कर रहे थे उस बात का कि अमित शाह ने कल बनारस के एक इलाके में निषाद बस्ती में स्थानीय लोगों के साथ खाना खाया तो क्या भूमिकाएं हो सकती हैं। कार्यक्रम में अब अखबारों का जिक्र करेंगे। प्रभात पांडे, हमने बड़ी खबर का जिक्र कर लिया
जी,
ठीक है, उसकी खबरों की हमने चर्चा कर ली, बाकी अखबार क्या कह रहे हैं, कौन कौन सी खबरें हैं?
जी मोहनलाल जी, टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर छापी है कि कानून मंत्री सदानंद गौड़ा ने इस बात पर चिंता जाहिर की है कि जो मुस्लिम युवक हैं उन पर आतंकी घटनाओं में लिप्त होने के गलत आरोप लगाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस पर गौड़ा ने चिंता जाहिर की है क्योंकि हाल फिलहाल में ऐसे कई मामले सामने आए थे जब सबूतों के अभाव में कई मुसलमान युवकों को छोड़ा है, तो गौड़ा ने कानूनी प्रक्रिया में सुधार की ज़रूरत पर बल दिया। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में ही महाराष्ट्र के वर्धा ज़िले में देश के सबसे बड़े आयुध डिपो में लगी भीषण आग की खबर को प्रमुखता दी गई जिसमें 16 सैनिकों की मौत हो गई। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज से शुरू जो दाखिले की प्रक्रिया शुरू हुई है उसको पहले पन्ने पर जगह दी है। खास बात यह है कि इस बार एडमिशन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। दाखिले के लिए कट ऑफ परसेंटेज इस बार और भी ज़्यादा रहने की संभावना है क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा 98% 99% छात्रों के आए। इसी से संबंधित
रिकॉर्ड लगातार टूटते जा रहे हैं।
दैनिक भास्कर में इसी से संबंधित एक दिलचस्प खबर है कि बिहार में जो आर्ट्स और साइंस के टॉपर हैं उनको पिछले दिनों आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे लगातार आया था और कुछ न्यूज़ चैनलों ने उन छात्रों का जब इंटरव्यू लिया इन टॉपर्स का तो इनको अपने विषय से जुड़े हुए जो प्रश्न जो मामूली प्रश्न हैं उनके उत्तर भी नहीं पता थे, ऐसी खबरें आई थी। तो अब बिहार के शिक्षा बोर्ड ने फैसला लिया है कि इन टॉपर्स का वो इंटरव्यू लेगा और फिर तय होगा कि
ये टॉपर
हैं भी या नहीं है। तो इस तरह से एक भ्रष्टाचार की बात सामने आने की बात हो रही है। इसके अलावा सोनिया गांधी के उस बयान को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी जिसमें कहा है कि मोदी पीएम है, कोई शहंशाह नहीं है। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस की लीड खबर के मुताबिक हथियारों के डीलर संजय भंडारी ने यह कबूल कर लिया है कि उनके और सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बीच ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। अखबार ने दावा किया है कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने अखबार को बताया कि पूछताछ के दौरान भंडारी ने ये बात स्वीकार की। इंडियन एक्सप्रेस में एक और दिलचस्प खबर है कि असम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा संचालित एक स्कूल में एक मुस्लिम छात्र ने पूरे राज्य में 10वीं की कक्षा में टॉप किया।
बहुत शुक्रिया प्रभात पांडे बड़ी खबरें बताने के लिए। और अब हम एक विशेष रिपोर्ट का जिक्र करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भारत की महत्वपूर्ण नदी गंगा की सफाई का ऐलान किया था। 2 साल बाद उस गंगा की क्या स्थिति है, यही जानने की कोशिश की बीबीसी दक्षिण एशिया के संवाददाता जस्टिन रॉलेट ने। जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट सुनिए वात्सल्य राय से।
भारत की सबसे अहम नदी गंगा प्रदूषित है, इस तथ्य की परख के लिए आपका वैज्ञानिक होना जरूरी नहीं है। आप पानी की तरफ देखिए, ये एकदम काला है, इसमें से गंध आ रही है। हम अभी कानपुर में हैं। उत्तर प्रदेश का ये शहर भारत के चमड़ा उद्योग का केंद्र है। यहाँ से तैयार होने वाला चमड़ा यूरोप और अमेरिका भेजा जाता है। यहाँ एक चमड़े का कारखाना है।
Oh God, it's really powerful.
यहाँ किस तरह का कचरा है?
ये बहुत ही जहरीला और केमिकल मिला हुआ पानी है। दरअसल ये चमड़े के कारखाने से आने वाला पानी है।
पर्यावरण के लिए अभियान चलाने वाले राकेश जायसवाल हमें एक ऐसे नाले के पास ले गए जो गंगा में मिलता है। ये एक खुला नाला है।
चमड़े के कारखाने में कई तरह के केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं, इनमें से कई तो बहुत खतरनाक किस्म के रसायन है।
गंगा ने मुझे बुलाया, यह शहर मेरे भीतर से उठे हुए शब्द थे, शायद वो शब्द भी नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो इस स्थिति को बदलने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में दमदार जीत के कुछ ही घंटों बाद मोदी ने एक बड़ी रैली में कहा था कि गंगा की सफाई का लक्ष्य ईश्वर ने उनके लिए तय किया है।
माँ गंगा जो चीख चीख कर कह रही है, कोई तो मेरा बेटा है, कोई तो मेरा बाबा है, जो मुझे इन गंदगी से बाहर निकाले। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शायद ईश्वर ने मेरे लिए तय किए हैं।
उन्होंने गंगा की सफाई के लिए 5 साल के दौरान $3 अरब खर्च करने का लक्ष्य तय किया है, लेकिन क्या इससे हालात बदलेंगे? हमें प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों के साथ चमड़े के कारखाने में औचक निरीक्षण के दौरान साथ जाने की अनुमति मिल गई। वहाँ मांस का अंबार था। कारखाने में चारों तरफ जहरीला रसायन बिखरा हुआ था। नदी को साफ करने के प्रयास एक आम पर्यावरण प्रोजेक्ट से बढ़कर है। इसे भारत के आधुनिक होने की परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार पर रोक लगाना और कड़ाई से प्रतिबंधों को लागू करना शामिल है। इस निरीक्षण से जाहिर हुआ कि अभी ऐसे प्रयासों को लंबा रास्ता तय करना है। क्या आपको लगता है कि ये प्रोजेक्ट बंद होगा?
इस पर मैं अपनी सिफारिश दूंगा।
लेकिन कार्रवाई भी हो रही है। सरकार ने प्रदूषण के मानकों को बढ़ा दिया है और 100 के करीब चमड़े के कारखानों को बंद कर दिया है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है। ये वाराणसी के बड़े सीवेज प्लांट की आवाज है। संजय कुमार सिंह इस प्लांट की देखभाल करते हैं। वो बताते हैं कि वाराणसी में नालों का ज्यादातर पानी गंगा में बिना शोधित हुए जाता है।
आप 35% मान सकते हैं, 35% जो है ट्रीटमेंट हो रहा है, 65% अभी ट्रीटमेंट होना बाकी है।
तो फिर सरकार इस बात को लेकर कैसे आश्वस्त है कि वो अपने मकसद में कामयाब होगी, जबकि पहले की सरकारें नाकाम हो चुकी हैं? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कहते हैं,
देखिए, हमने पहले की गलतियों से सबक लिया है, हमने इसमें सुधार भी किया है। मोदी आगे बढ़कर अगुवाई कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा गंगा मिशन 5 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन हमें भरोसा है कि बड़ा बदलाव जरूर आएगा।
शाम का वक्त है और हजारों की संख्या में लोग गंगा किनारे घाट की सीढ़ियों पर जमा है। वो शाम की आरती के लिए जुटे हैं। गंगा को साफ करने के लिए लगातार प्रयास की जरूरत होगी, कड़ी निगरानी रखनी होगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पास एक खास पूंजी है, वो ये कि तमाम भारतीय चाहते हैं कि वो गंगा साफ करने के मिशन में कामयाब हों।
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बने हुए 2 साल हो चुके हैं और 2 साल बाद गंगा की क्या स्थिति है? बीबीसी के दक्षिण एशिया संवाददाता जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। आप सुन रहे थे वात्सल्य राय से।
बीबीसी हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
एक खबर bbchindi.com से कि अमेरिका में 2016 नेशनल स्पेलिंग प्रतियोगिता को भारतीय मूल के 2 लड़कों 11 साल के निहार जंगा और 13 साल के जयराम हथिवार ने जीता है और ये लगातार भारत स्पेलिंग प्रतियोगिता में अमेरिका में भारतीय बच्चे छाए हुए हैं। पिछले हफ्ते आयोजित एक प्रतियोगिता में जीतने वाले निहार टेक्सास के रहने वाले हैं, जबकि जयराम न्यूयॉर्क से हैं। दोनों को विजेता घोषित किया गया। 2015 में आपको बता दें जो विजेता थे वो गोकुल थे, वान्या शिवशंकर, और 2014 में अनसुन सुजॉय और श्रीराम हथवार रहे। तो लगातार भारतीय बच्चे स्पेलिंग में अपनी महारत दिखा रहे हैं। अगर इस खबर को आप पढ़ना चाहते हैं तो bbchindi.com पर आइए। और अब इससे पहले कि हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। दिल्ली से सटे नोएडा के दादरी इलाके में गोमांस खाने की अफवाह में भीड़ के हाथों मारे गए मोहम्मद अखलाक के घर से मिले मांस को एक लैब ने गाय का मांस बताया है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि फ्रांस में 10 जून से शुरू होने वाले यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट को चरमपंथी निशाना बना सकते हैं। अमेरिका की सिनसिनाटी पुलिस ने एक चिड़ियाघर में गोरिल्ला को मारे जाने की घटना की जाँच शुरू कर दी है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए रिपब्लिकन पार्टी की ओर से आगे चल रहे डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव कवर कर रहे पत्रकारों को बेईमान बताया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में बस इतना ही। विश्व भारती जब हम आपके पास लाएंगे तो उसमें हम आपको खेल की खबरें भी सुनाएंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।